दलित साहित्य के प्रतिमान। मराठी भाषा में 7वें दशक में शुरू होकर दलित साहित्य धीरे धीरे अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण करने की ओर बढ़ रहा है। मराठी के अतिरिक्त गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगला, हिंदी व पंजाबी में भी दलित साहित्य ने अपनी पहचान स्थापित करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। हिंदी में पिछले करीब एक दशक से शुरू हुआ दलित साहित्य अपने पूरे विवादों के साथ साहित्यिक परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण परिघटना के रूप में प्रस्तुत हो गया है। दलित साहित्य के साथ मराठी भाषा में उसके उदय से जो प्रश्न जुड़े हुए हैं, वही प्रश्न कमोबेश दूसरी भाषाओं में भी पैदा हुए हैं। जैसे दलित साहित्य का रचयिता कौन, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र संबंधी प्रश्न भी उठते हैं और इस संदर्भ में प्रसिद्ध मराठी दलित लेखक शरण कुमार निंबाले की पुस्तक दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी प्रकाशित हुई है। लेकिन दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र की बात अभी से कोई निश्चित रूप शायद न ले पाए, क्योंकि उसके लिए जिस सैद्धांतिक और दार्शनिक गहराई की अपेक्षा है उसे बनने में शायद काफ़ी समय लग जाए। बावजूद इसके चर्चा चलनी स्वाभाविक भी है और जरूरी भी। शरण कुमार लिम्बाले मराठी के बाद हिंदी भाषा में व बाद में कई अन्य भारतीय भाषाई समाजों जैसे पंजाबी आदि में अपनी आत्मकथा अक्कर माशी के कारण बहुत चर्चित हुए हैं। उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, तो लेखक के रूप में उनकी मुख्य पहचान एक सृजनात्मक लेखक की बनी है। लेकिन शरण कुमार लिम्बाले ने शोध व आलोचना के क्षेत्र में पीएचडी डिग्री लेने के अलावा मराठी दलित साहित्य के अध्ययन के लिए एक स्वस्थ आलोचनात्मक दृष्टि भी विकसित की है और उनकी हाल में हिंदी में अनुवादित पुस्तक दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र उनकी इसी स्वस्थ आलोचनात्मक दृष्टि की परिचायक कृति है। लिम्बाले की इस रचना में दलित साहित्य स्वरूप और लक्ष्य, दलित साहित्य और अम्बेडकरवाद, दलित साहित्य और मार्क्सवाद, दलित साहित्य और सौंदर्य शास्त्र निबंध भी शामिल है। इस पुस्तक की संक्षिप्त भूमिका में लिम्बाले का कहना है, विश्व में मनुष्य जैसी सत्य और सुंदर दूसरी कोई चीज नहीं है, इसलिए तो मनुष्य की समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की चर्चा होनी आवश्यक है। मेरे विचार से यही चर्चा दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र की चर्चा होगी। जाहिर है कि लिम्बाले द्वारा सौंदर्य शास्त्र की जो व्याख्या या परिभाषा यहाँ दी गई है वह काफी अस्पष्ट और सीमित है। वैसे मनुष्य के सत्य और सुंदर होने की अवधारणा में लिम्बाले पुराने रूसी जनवादी दार्शनिक चर्नेश्वस्की के से जरूर प्रभावित लगते हैं। पुस्तक के पहले अध्याय में दलित साहित्य के स्वरूप और लक्ष्य को स्पष्ट किया गया है। यहाँ सौंदर्य शास्त्र की चर्चा की ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। दलित साहित्य और अम्बेडकरवाद अध्याय में लिम्बाले ने दलित साहित्य के आधार पर भी विचार किया है। जाहिर है इसमें सौंदर्य शास्त्र संबंधी चर्चा निहित रूप में शामिल है। दलित साहित्य का जन्म महाराष्ट्र और मराठी भाषा में हुआ। स्वयं लिम्बाले मराठी भाषी लेखक हैं, इसलिए इस अध्याय में उन्होंने मराठी दलित साहित्य के उद्भव और विकास का और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का जिनमें दलित साहित्य का उदय हुआ की भी चर्चा की है। दलित साहित्य संबंधी जो आलोचनात्मक पुस्तकें मराठी में रची गई हैं उनमें अर्जुन डांगरे द्वारा संपादित दलित साहित्य एक अभ्यास 1978 ईस्वी, शरण कुमार लिम्बाले द्वारा संपादित दलित साहित्य 1993 ईस्वी, गौ म कुलकर्णी द्वारा संपादित दलित साहित्य प्रवाह और प्रतिक्रिया 1986, विद्याधर पुंडलिक द्वारा संपादित दलित साहित्य एक सामाजिक सांस्कृतिक अभ्यास 1992 ईस्वी आदि की सूची देते हुए शरण कुमार लिम्बाले ने बाबूराव बागुल, राजा ढाले, नामदेव ढसाल, शंकर राव खरात, राव साहब कस्बे आदि द्वारा विभिन्न दलित साहित्यिक सम्मेलनों के अवसर पर दिए अध्यक्षीय भाषणों के महत्व को भी रेखांकित किया है। जनांतर बागमारे ने मराठी भाषा में अमेरिकन निग्रो साहित्य, समाज और संस्कृति पुस्तक लिखी, जो शायद किसी भारतीय भाषा में रची ब्लैक साहित्य पर एकमात्र पुस्तक ही हो। शरण कुमार लिम्बाले ने दलित समीक्षकों से जो अपेक्षाएं की हैं उनमें परंपरा की खोज, वैचारिक साहित्य का सृजन, दलित साहित्य का शास्त्र निर्माण और अंततः दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र की बात साथ साथ चल रही है। लिम्बाले ने सौंदर्य शास्त्र की संभावना की खोज को रेखांकित कर यथार्थवादी नजरिया अपनाया है, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र की खोज अथवा निर्माण एक बड़ा प्रोजेक्ट है। पहले इसकी संभावनाओं को ही खोजा जाना चाहिए। शरण कुमार लिम्बाले ने अपने पुस्तक के दलित साहित्य और मार्क्सवाद शीर्षक निबंध में मराठी के इस विषय पर हुई गंभीर चर्चाओं से हिंदी पाठकों का अवगत करवाया है। यह जानना सुखद आश्चर्य है कि अधिकांश प्रबुद्ध मराठी भाषी दलित लेखकों की प्रवृत्ति मार्क्सवाद को दलित साहित्य का विरोधी ने समझकर मित्रभाव से ग्रहण करने में है, जबकि हिंदी भाषी लेखन में अधिकांश दलित लेखकों की प्रवृत्ति मार्क्सवाद के विरोध करने की ओर लगी है। बाबूराव बागुल, दया पवार, अर्जुन डांगले, नारायण सुर्वे, यशवंत मनोहर, राव साहब कस्बे, वी स जोग, शरद पाटिल और सदा कवाड़े आदि मराठी लेखकों चिंतकों ने दलित साहित्य के संदर्भ में मार्क्सवाद और अम्बेडकर चिंतन के समन्वय पर बल दिया है। वी स जोग ने पूरी पुस्तक मार्क्सवाद और दलित साहित्य की रचना की है, लेकिन गंगाधर पानतावड़े, राजा ढाल आदि ने केवल अम्बेडकर को दलित साहित्य का आधार माना और मार्क्सवाद को दलित विरोधी चिंतन कहा। इस संदर्भ में श्रवण कुमार लिम्बाले ने स्वयं को बाबूराव बागुल आदि की परंपरा में जोड़ते हुए कहा है, दलित चेतना, मार्क्सवादी चेतना और निग्रो चेतना अलग अलग है। उनके ये क्षेत्र भी अलग हैं, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य मानव मुक्ति का है। दुनिया में स्थान स्थान पर जारी आंदोलनों में विषमता विरोधी चेतनाएं एक दूसरे की कितनी पूरक हैं, इससे यह स्पष्ट होता है। श्रवण कुमार लिम्बाले ने इस संदर्भ में एक तर्कशील और सही पोजीशन अख्तियार की है, जिसमें दलित साहित्य चिंतन अधिक निखर सकता है। दलित साहित्य संबंधी चिंतन को लेकर पिछले 5-6 वर्षों में हिंदी में भी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें रमणिका गुप्ता, पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी और डॉक्टर एन सिंह ने कई कई पुस्तकों का लेखन और संपादन किया है। डॉक्टर चमनलाल द्वारा संपादित 2 पुस्तकें भारतीय साहित्य में दलित व स्त्री लेखन व दलित और अश्वेत साहित्य, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय व भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में उन्हीं द्वारा उन विषयों पर आयोजित 2 राष्ट्रीय संगोष्ठियों पर आधारित है, व कुछ अन्य पुस्तकें भी छपकर सामने आ चुकी हैं। डॉक्टर धर्मवीर ने कबीर बेशक अपनी पुस्तकों के माध्यम से दलित साहित्यिक चिंतन का एक पक्ष प्रस्तुत किया है। हिंदी में दलित साहित्य चिंतन अभी इसी मंथन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। श्रवण कुमार लिम्बाले ने अमेरिकन निग्रो साहित्य को दलित साहित्य के निकटतम समझते हुए एक पूरा अध्याय दलित साहित्य और निग्रो साहित्य की तुलना पर आधारित किया है। उन्होंने ब्लैक और दलित समीक्षा में भी समानता के बिंदुओं की तलाश की, जबकि हिंदी भाषी दलित लेखन साहित्यिक परंपरा से काफी हद तक अनभिज्ञ ही जान पड़ता है। पुस्तक के विषय का केंद्रीय निबंध लिम्बाले ने अंत में रखा है। इस निबंध में उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया है कि मराठी चिंतकों और समीक्षकों ने मराठी दलित साहित्य का सही मूल्यांकन नहीं किया। शरद पाटिल की किताब अब्राह्मणी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र को हथियार का दर्जा दिया। यदुनाथ थत्ते ने आक्रोश को 11वां रस घोषित किया। आचार्य जावेडकर क्रांति को 10वां रस घोषित कर चुके थे। यदि नवरस की परंपरा को दलित लेखक अपनाएंगे तो निश्चय ही पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र के जाल में फंसकर रह जाएंगे। श्रवण कुमार लिम्बाले ने दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के निर्माण संबंधी कुछ सूत्र विचारार्थ सामने रखे हैं। जैसे, पहला, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र का आधार अध्यात्मवाद न होकर भौतिकवाद है। दूसरा, अम्बेडकरी विचार इसके केंद्र में होगा। तीसरा, मानव समता, स्वतंत्रता, न्याय और प्रेम के सामाजिक मूल्यों को करार रूप में ढाला जाएगा। चौथा, समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के जीवन मूल्य दलित साहित्य के सौंदर्य तत्व होंगे। पांचवा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जीवनवादी होगा। श्रवण कुमार लिम्बाले ने इन सूत्रों के साथ अपनी इस छोटे आकार की मगर महत्वपूर्ण वैचारिक पुस्तक का समापन किया है। वास्तव में दलित साहित्य के संदर्भ में हिंदी में जो लेखन सामने आया है, यदि सृजन के क्षेत्र में भी मराठी दलित आत्मकथाएं उनमें सर्वोच्च स्थान रखती हैं, तो अब तक जो चिंतन परक लेखन हिंदी में हुआ है उनमें भी लिम्बाले के पुस्तक अनुवाद में होकर भी सर्वोच्च स्थान रखती है। लेकिन अपनी गंभीर स्थापनाओं व चिंतन के बावजूद श्रवण कुमार लिम्बाले की पुस्तक दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र की तलाश भी कही जा सकती है। इस विषय पर विषय का एक सुसंगत समाधान नहीं। इतना जरूर है कि लिम्बाले का साहित्यिक चिंतन इस विषय के अधिक व्यावहारिक हल की दिशा में सोचने का संकेत दे ही देता है। हिंदी में सारिका और संचेतना द्वारा कभी मराठी दलित साहित्य पर केंद्रित अंक, बाद में साहित्य और दलित चेतना शीर्षक से पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ, जिसका हाल में नया संस्करण छपकर सामने आया है। इस पुस्तक में शरद चंद्र मुक्तिबोध का लेख दलित साहित्य प्रमाणिक चेतना की प्रतीति, कुलकर्णीकृत दलित साहित्य एक चिंतन, ताराचंद खांडेकर रचित दलित साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि, सदा कन्नाडेकृत दलित साहित्य प्रासंगिकता और संभावना आदि साहित्यिक चिंतन की दिशा को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार अर्जुन डांगले द्वारा संपादित अंग्रेजी पुस्तक दी पॉइजन्ड ब्रेड में महाड़ में डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण, अर्जुन डांगले कृत दलित साहित्य अतीत वर्तमान व भविष्य, बाबूराव बागुल कृत दलित साहित्य मानवतावादी साहित्य ही है, एम एन वानखड़े कृत मित्रों गैर जिम्मेदार लेखन का दौर खत्म हुआ, जनार्दन बाघमारे कृत अश्वेत व दलित साहित्य व आरजी जाधव कृत दलित संभावनाएं व सौंदर्य अलगाव आदि लेख दलित साहित्यिक चिंतन को और अधिक स्पष्टता से सामने आते हैं। इन सभी निबंधों के आधार पर वह दलित साहित्यिक सृजन को ध्यान में रखकर यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र का निर्माण अभी संभव है या इस समय सौंदर्य शास्त्र के निर्माण की बात स्थगित कर दलित साहित्य के प्रतिमानों पर चर्चा की जानी ज्यादा जरूरी व व्यावहारिक होगी। यदि ऐसा हो तो दलित साहित्य के प्रतिमान क्या हो। प्रसिद्ध हिंदी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के भाई व स्वयं मराठी के लेखक शरद चंद्र मुक्तिबोध मार्क्सवाद और दलित जीवन दृष्टि में काफी साझा देखते हैं, लेकिन उन्होंने दलित सौंदर्य शास्त्र की चर्चा नहीं की। ताराचंद खंडेकर निषेध नकार और विद्रोह को दलित साहित्य की विशेषताओं के साथ इसे अंबेडकरवादी नवनिर्मित निष्ठाओं का साहित्य घोषित करते हैं। वरिष्ठ मराठी लेख दलित लेखक बाबूराव बागुल ने दलित साहित्य को विश्व के क्रांतिकारी साहित्य की परंपरा से जोड़ा है, यही बात अर्जुन डांगले ने भी जोर देकर कही है। दलित साहित्य के संदर्भ में सर्वाधिक गंभीर चिंतन मराठी भाषा में ही हुआ है, लेकिन मराठी भाषा में भी दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र या प्रतिमान संबंधी समस्या का न तो कोई समाधान प्रस्तुत हुआ है और न ही इस संदर्भ में पर्याप्त लेखन ही हुआ है। लेकिन मराठी चिंतकों के चिंतन से जो कुछ सूत्र मिलते हैं उन्हें एक व्यवस्थित रूप देकर दलित साहित्य के प्रतिमानों पर आरंभिक चर्चा की जा सकती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसमें नए कोण व नए बिंदु जोड़े जा सकते हैं और दलित साहित्य की सृजनात्मक उपलब्धियों को सामने रखकर दलित साहित्य के विशिष्ट प्रतिमान स्थापित किए जा सकते हैं जो भविष्य के युवा दलित लेखकों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। दलित साहित्य के प्रतिमानों में सबसे पहला इसका आधार देखना जरूरी है। ज्यादातर लेखकों व चिंतकों में इस बिंदु पर मतैक्य है कि दलित साहित्य जीवनवादी साहित्य है। वह हवाई या काल्पनिक या वायवी दुनिया का साहित्य न होकर संघर्षशील दलित के जीवन के दुखों पीड़ाओं व संघर्षों को अभिव्यक्ति देने वाला साहित्य है। दूसरे शब्दों में दलित साहित्य का आधार जीवन का यथार्थ और थोड़ा सीमित रूप में दलित जीवन का यथार्थ है। अतः वैचारिक स्तर पर विश्व साहित्य से संपृक्त होते हुए दलित साहित्य यथार्थवादी साहित्य की कोटि में आएगा। दलित साहित्य का यथार्थवाद आगे किस दिशा का होगा, यानी आलोचनात्मक या दोनों ही, यह विचारणीय हो सकता है। आलोचनात्मक या क्रांतिकारी चित्रण के प्रसंग में दलित साहित्य के दलितों द्वारा या गैर दलितों द्वारा लेखन की समस्या का समाधान भी संभव है। गैर दलितों द्वारा दलित जीवन का यथार्थ ज्यादातर आलोचनात्मक दृष्टि से अंकित किया जाता है, जबकि स्वयं दलित साहित्यकारों द्वारा दलित जीवन का चित्रण आलोचनात्मक और क्रांतिकारी दोनों तरह का हो सकता है। दलित जीवन का यथार्थ कटु विभत्स कष्टदायक व संघर्षरत है। अतः लेखक दलित हो या गैर दलित, इस जीवन के वेदना या पीड़ा के पक्ष को वह उपेक्षित नहीं कर सकता, लेकिन इस पीड़ाजनक यथार्थ को क्रांतिकारी बदलाव द्वारा एक नए यथार्थ के सृजन की दृष्टि क्रांतिकारी दलित लेखकों के पास होने की संभावना अधिक है। एक गैर दलित भी क्रांतिकारी यथार्थवादी हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसका जाति स्तर पर गैर जातिवादी या जात पात रहित दृष्टि संपन्न होना ही नहीं, जीवन व्यवहार में भी जात पात विरोधी दलित वर्ग के साथ अभिन्न होना जरूरी है। ऐसे लेखक विरले ही होंगे, लेकिन ऐसे लेखकों का दलित लेखकों को स्वागत करना चाहिए। दलित साहित्य यदि यथार्थवादी साहित्य की विश्व दृष्टि से स्वयं को जोड़ता है तो जाहिर है कि वैचारिक स्तर पर उसकी प्रगतिशील या मार्क्सवादी दृष्टि संपन्न ब्लैक साहित्य व स्त्रीवादी या स्त्री केंद्रित साहित्य से भी निकटता बढ़ेगी, क्योंकि ये सभी साहित्यिक प्रवृत्तियां भी यथार्थवाद को या कला के लिए की बजाय कला जीवन के लिए के सिद्धांत का प्रतिमान अपने लिए जरूर मानते हैं। अतः दलित साहित्य के प्रथम प्रतिमान या मानदंड के रूप में दलित साहित्य जीवन के लिए यथार्थवाद आधारित साहित्य है माना जा सकता है। इस प्रतिमान में एक भेद रह सकता है कि जहां अन्य जीवन केंद्रित साहित्य लेखन जैसे स्त्री केंद्रित लेखक स्त्री जीवन के यथार्थ पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा, वैसे ही दलित साहित्य यथार्थ चित्रण के संदर्भ में दलित जीवन के चित्रण पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन उसका मुख्य आधार होगा यथार्थवाद ही। दलित साहित्य के आधार का प्रतिमान स्पष्ट करने के बाद यथार्थ चित्रण के विश्व दृष्टि का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। जीवन के यथार्थ को एक दलित लेखक किस जीवन दृष्टि से ग्रहण कर मन में उसका चित्र उतारता है वह बाद में सृजन के रूप में उसे ढालता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। आरंभिक दलित लेखकों अन्ना भाऊ साठे व नारायण सुर्वे आदि की जीवन दृष्टि मार्क्सवाद से प्रभावित प्रेरित थी। जबकि मध्यकालीन भक्तिधारा के दलित भक्त कवियों की जीवन दृष्टि निर्गुणवादी दृष्टि से अधिक प्रभावित थी। समकालीन दलित साहित्य महात्मा फूले, डॉक्टर अम्बेडकर और पेय्यार की जीवन दृष्टि से अधिक प्रभावित है। महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन का भी कुछ प्रभाव दलित साहित्य पर है। कई दलित चिंतक मार्क्सवादी जीवन दृष्टि से भी प्रभावित हैं व कई अनमार्क्सवाद और अम्बेडकर चिंतन को मिलाकर अपनी जीवन दृष्टि विकसित करते हैं। इस संदर्भ में लंबा विमर्श चल सकता है, लेकिन यदि जनतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाकर यथार्थ चित्रण को ही इस साहित्य की गुणवत्ता का मुख्य बिंदु माना जाए और लेखक की विश्व दृष्टि उसके यथार्थ चित्रण की गहराई व्यापकता से इंगित हो, तो इस क्षेत्र में विवाद काफी कम हो सकता है। बहुत कम साहित्यिक प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो किसी विशिष्ट साहित्यिक विधा को जन्म दें या उसे अपनी पहचान का केंद्र बना दें। दलित साहित्य इस अर्थ में भी विशिष्ट है कि इसने आत्मकथा विधा को साहित्यिक विधा के रूप में विस्तार और निखार दिया है। मराठी भाषा में तो आत्मकथा ने उपन्यास के लगभग विकल्प के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। अन्य भारतीय भाषाओं में भी दलित लेखन यद्यपि सभी विधाओं में हो रहा है, लेकिन उनकी विशिष्ट पहचान आत्मकथा के रूप में उभर रही है। जैसे हिंदी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय और सूरजपाल चौहान आदि की आत्मकथाएं, पंजाबी में लाल सिंह दिल और प्रेम गोरखी आदि की आत्मकथाएं, यही स्थिति कमोवेश अन्य भाषाओं में भी है। दलित साहित्य का तीसरा प्रतिमान आत्मकथा विधा के साहित्यिक संयोजन का भी हो सकता है। किस दलित लेखक की आत्मकथा में उच्च कोटि के साहित्यिक विधा के गुण अभिव्यक्त हो पाए हैं और किस रूप में दलित साहित्य के संदर्भ में आत्मकथा विधा के साहित्यिक विधा रूप में स्थापित होने व लोकप्रिय बनने के कुछ विशेष सामाजिक सांस्कृतिक कारण हैं। जैसे वही आत्मकथा अधिक प्रभावशाली मानी गई है, जिसमें दलित समाज के अंतरंग पक्षों का, उसके सुखों दुखों, पीड़ाओं व संघर्षों का एक व्यक्ति लेखक के जीवन संघर्षों के माध्यम से यथार्थ चित्रण हुआ है। लेकिन यदि ये आत्मकथा केवल एक व्यक्ति लेखक, चाहे लेखक दलित ही क्यों न हो, कि व्यक्तिगत दुखों का आत्मलाभ बनकर रह गई हो, तो उसे वह मान्यता या लोकप्रियता नहीं प्राप्त हुई, जैसे दया प्रवारकित बलंत अछूत, लक्ष्मण माने कृत उपरा पराया, लक्ष्मण गायकवाड़ कृत उच्चलया उठाई गीत या शरण कुमार लिम्बारे कृत अक्कर माशी को प्राप्त हुई। साहित्य के संदर्भ में चाहे वह किसी भी काल का साहित्य हो या किसी भी प्रवृत्ति का साहित्य, जहाँ तक साहित्य में गहराई, व्यापकता, संवेदना और विचार आदि के गुण हैं, जो साहित्य की गुणवत्ता की कसौटी या सामान्य प्रतिमान बनते हैं, उनके अपेक्षा तो किसी भी स्तर पर नहीं हो सकती। दलित साहित्य में के संदर्भ में इस संदर्भ की विशिष्ट पहचान के लिए इसके परीक्षण में जो प्रतिमान अनिवार्यतः उभर कर सामने आएंगे, उनमें दलित साहित्य का आधार यथार्थवादी होना, दलित साहित्य जीवन के लिए या जीवनवादी होना और आत्मकथा विधा का सृजनात्मक संदर्भ में सम्यक चित्रण कर पाना, आलोचनात्मक या क्रांतिकारी विश्व दृष्टि होना, साहित्यिक गुणवत्ता होना आदि शामिल हो सकते हैं। क्या हिंदी का समकालीन दलित साहित्य सृजन उपरोक्त प्रतिमानों पर खरा उतरता है या इन प्रतिमानों पर खरा उतरने की उसमें ललक है? ओम प्रकाश वाल्मीकि व कुछ अन्य लेखकों ने यह ललक भी है और सजगता भी, उन्हें हिंदी दलित साहित्य को मराठी दलित साहित्य की तरह ही अपनी गुणवत्ता से तथाकथित मुख्यधारा के साहित्य के बराबर खड़ा करना है। उसके लिए आरक्षण या कोई और रियायत नहीं लेनी है। यह बात अलग है कि दलित साहित्य की गुणवत्ता को उचित सम्मान मिलने में इसे दीर्घकालीन वैचारिक संघर्ष गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग संस्कारों की तरह ही व्यापक साहित्यिक सांस्कृतिक अकादमिक संस्थानों में जातिगत संस्कार जड़े जमाए हुए हैं। एक प्रबुद्ध तर्कशील सांस्कृतिक संघर्ष ही इन वर्चस्ववादी, वर्गवादी व जातिवादी संस्कारों से निरंतर संघर्ष करना होगा, तभी यथार्थवाद आधारित दलित, स्त्री केंद्रित व प्रगतिशील साहित्य को उचित स्थान मिल सकेगा।